आहारम वेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुणलब्धये। महावीर भगवान की, उमा स्वामी आचार्य महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की, तत्वार्थ सूत्र का एक एक अध्याय अपन समझने की कोशिश करेंगे। तत्वार्थ सूत्र की रचना आचार्य उमा स्वामी महाराज ने करी। शिव कुमार नाम के अपने शिष्य के पूछने पर महाराज मेरे हित का क्या उपाय है, किमनु खलु आत्मनि हितम स्यादिति वा, तो बड़ा अल्प जवाब दिया, मोक्षः, मोक्ष ही तुम्हारे हित का उपाय है। तो शिष्य पुनः प्रश्न करता है कि कस्य प्राप्ति उपाया, उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है। तब आचार्य उमा स्वामी महाराज सूत्र की रचना करते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता है, अलग अलग न सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है, न सम्यक दर्शन और ज्ञान मिलकर के दो मोक्ष का कारण हैं, और तीनों भिन्न भिन्न भी रहें, अगर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तो वह भी मोक्ष का मार्ग नहीं बना पाएंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा की जो एक रूप परिणति है, वह मोक्ष का मार्ग है। पहले तो भगवान को प्रणाम किया। भगवान के तीन गुण अपन विशेष रूप से देखते हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेश। सुमंगलाचरण उमा स्वामी महाराज ने किया या नहीं किया, इस पर तो विवाद हो सकता है कि मंगलाचरण तत्वार सूत्र में किसने लिखा है। अपन तो उसका अर्थ समझ लेवे कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष के मार्ग को बताने वाले, उस पर स्वयं चलने वाले नेता। और कर्म भूभ्रताम, जितने भी कर्म हैं वो मानव की एक पर्वत के समान है, उसको नष्ट करने वाले भेत्तारम, उस कर्म रूपी पर्वत को नष्ट करने वाले अर्थात वीतरागी हैं। और समस्त लोक और अलोक को ज्ञातारम तत्व, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जितने भी लोक अलोक में जड़ और चेतन पदार्थ हैं सबको जानने वाले, या कि प्रयोजन भूत आत्म तत्व को जानने वाले। सुनिश्चय ने की अपेक्षा से देखा जाए तो भगवान तो आत्मज्ञ हैं, लेकिन उनकी सर्वज्ञता भी सर्वमान्य है, वो व्यवहार नय की अपेक्षा से। अपन कहते भी हैं कि सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, आप समस्त पदार्थों को जानते हैं, लेकिन तत्व में भी जो आत्म तत्व है उसमें ही लीन रहते हैं। वंदे तद्गुण लब्धे अहम्, मैं आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए आपकी वंदना करता हूं, आपको पूजता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, मेरा और कोई भी उद्देश्य नहीं है। वास्तव में अपने यहां पर ऐसे भाव से ही अपन मोक्ष के मार्ग को समझकर उस पर चल सकते हैं। और आगे लिखा कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तो आपने कहे, सो सम्यक दर्शन क्या चीज है? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है ऐसा नहीं कहा, अर्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है सो भी नहीं कहा। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वस्तु का या तत्व का जो यथार्थ स्वरूप है, जो अर्थ है, उसके साथ जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन। अगर हम विशेष रूप से जानना चाहें तो जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है, जैसा भगवान ने उसका स्वरूप जाना है, उस पर वैसा ही श्रद्धान करना। स्वरूप जानने का नाम नहीं है श्रद्धान सम्यक दर्शन। जैसा भगवान ने स्वरूप जाना है सो ही वैसा है, इस प्रकार का जो अंतरंग में भाव है, रुचि है, श्रद्धान है, वही सम्यक दर्शन है। तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, वह जो सम्यक दर्शन है वह दो प्रकार से होता है, निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगमज सम्यक दर्शन, जो बिना किसी उपदेश के सहज रूप से उत्पन्न हो जावे उसे कहते निसर्ग सम्यक दर्शन, और जो पर के उपदेश पूर्वक अपने जीवन में तत्व के प्रति, तत्वार्थ के प्रति श्रद्धान जागृत होता है उसे अधिगमज कहते हैं। हालांकि निसर्गज और अधिगमज दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन में तत्व का उपदेश तो है, लेकिन एक तो साक्षात तत्व का उपदेश वर्तमान में मिला है सो उत्पन्न हुआ, और एक पूर्व जीवन के संस्कार वश इस जीवन में बिना किसी प्रयास के तत्व का बोध होने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। जैसे कि पक्षी जन्म लेते ही बिना सिखाए उड़ना सीख लेते हैं, कारीगर का लड़का अगर होशियार होवे तो अपने पिता के समस्त कार्य को बिना उनसे किसी और से कोई डिग्री हासिल करे सीख लेता है। शिल्प इत्यादि, कला इत्यादि भी जो बिना किसी उपदेश के, बिना किसी इंस्टीट्यूट के और सहज रूप से प्राप्त हो जाती है, जिसे अपन टैलेंट भी कहते हैं, प्रतिभा भी कहते हैं, जो कि जन्मजात होती है, ऐसा ही सम्यक दर्शन भी जो अंतरंग में दर्शन मोहिनी के क्षय उपसम और उपसम होने पर सहज ही उत्पन्न हो जाता है। और एक तो दर्शन मोहिनी का क्षय से उपसम उपसम वाही में उपदेश सुन करके विशुद्धि बढ़ने पर होता है, उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। इन दोनों में इतना ही अंतर है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर्णिद्रा मोक्षास्तत्वम, ऐसे सात तत्व कहे गए हैं, यही प्रयोजन भूत जानने योग संसार में तत्व हैं। जीव तो जो चेतनावान है वो जीव है, जिसके भीतर चेतना नहीं है वो अजीव है। निरंतर संसार अवस्था में कर्मों के बंधन से युक्त आत्मा अपने विकारी भावों के द्वारा कर्मों का आगमन करता रहता है, उन्हें बुलाता रहता है, इसी को कहते आश्रव। और जिन परिणामों के द्वारा आश्रव होता है उसको भी आश्रव कहते हैं, मिथ्यात अविरति इत्यादि, और कर्मों के वर्गणाओं के आने को भी द्रव्य आश्रव कहते हैं। और आए हुए कर्म आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हो जाते हैं, उसे बंध कहते हैं। जैसे कि दूध में अपन पानी मिला देते हैं तो एक मेघ हो जाता है। इसी प्रकार से कर्म भी आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह करके और स्थित हो जाता है, इसे ही बंध कहते हैं। संश्लेष बंध होता है। और जो पांचवा तत्व, जो अनादि काल से कर्म आ रहे थे, संवर के कारणों को अंगीकार करके और हमने उनके आने को रोक दिया, इसी का नाम संवर है। और जो कर्म बंधे हुए थे उन कर्मों का क्रम क्रम से अपने विशुद्धि परिणाम के द्वारा, तपस्या के द्वारा उन कर्मों को क्षय करते जाना, एक देश क्षय करना कर्मों का निर्जरा कहलाता है। निर्जरा दो प्रकार की होती है। यहां पर अविपाक निर्जरा ही प्रयोजनभूत है। जो कर्म अपने आप बंध की अवस्था पूर्ण होने पर उदय में आकर के अपना फल देकर के खिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो सविपाक निर्जरा यहां मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो तपस्या के द्वारा जो अपने कर्मों की निर्जरा की जाती है वही प्रयोजनभूत है। और समस्त कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। इस प्रकार सात प्रयोजनभूत तत्व हैं, इनको जानना, इन पर ही श्रद्धान करना, इसी से अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा कहा, सो हमें तत्व और उनका जैसा स्वरूप है उन सब पर श्रद्धान करना होगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। तो तत्व को, उसके स्वरूप को जानना भी अनिवार्य हो गया। इसलिए अपन ने इनका स्वरूप भी जान लिया। जैसे कि मोक्ष मार्ग में सात तत्वों का स्वरूप है जानना अनिवार्य, ऐसे ही संसार के मार्ग में भी अगर कोई उद्योग धंधा लगाते हैं तो सात बातें जानना जरूरी है। भैया, जौन सी चीज अपन बनाना चाह रहे हैं वो चीज का सोर्स क्या है, कहां से मिलेगी? तो वो जो रॉ मटेरियल है जिसको हम प्योर करेंगे और जो हमें स्वर्ण इत्यादि धातु प्राप्तव्य है प्राप्त करेंगे, उसके लिए पहले कैसे प्राप्त होगी? वो रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल तो जीव द्रव्य के समान हो गया कि जीव द्रव्य ही प्योर होकर के मोक्ष अवस्था का अनुभव करेगा। उसके साथ जो इंप्योरिटीज लगी हैं वो किस प्रकार की हैं? तो ठीक, जीव के साथ अनादि काल से जो कर्मों का बंधन हुआ है वो इंप्योरिटीज के समान ही तो है, उसको जानना भी जरूरी है। कैसे वे कर्म, कौन से ऐसे परिणाम हैं, मेरे ऐसा क्या करने से वो कर्म आते हैं, यह जानना भी जरूरी है ताकि मैं उससे बच सकूं। तो इंप्योरिटीज किस प्रकार से आती हैं ये भी जानना जरूरी है ताकि हमने जो रॉ मटेरियल कलेक्ट किया है उसमें और इंप्योरिटीज ना आए। और इंप्योरिटीज किस तरह से प्योर मटेरियल के साथ में बाइंड अप है, उनका बंधन किस प्रकार का है, कोऑर्डिनेट बाइंडिंग है कि कोवेलेंट, कौन से प्रकार के बॉन्डेज है, ऐसा अपन पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से संश्लेष संबंध कर्मों का आत्मा के साथ हुआ है यह भी जानना होगा। कर्म तो विकारी अवस्था है मेरी, वो क्षणिक है, मैं तो त्रैकालिक अवस्था की तरफ ध्यान दूं तो शुद्ध ही हूं। इस प्रकार बंध तत्व के बारे में निरंतर चिंतन करता रहता है कि यह जो कर्म मेरे साथ बंधे हैं इसके बावजूद भी वे जो राग द्वेष परिणाम मेरे अंदर हो रहे हैं वो अपने स्वभाव नहीं है, मेरे वैभाविक स्थिति की वजह से ये कर्मों का बंधन मेरे साथ हुआ है। और मैं अगर गुप्ती समिति अनुप्रेक्षा इत्यादि का आलंबन लेऊं तो इन आने वाले कर्मों को आने से रोक सकता हूं, यह संभव है। ठीक इसी प्रकार से इंप्योरिटीज धीरे धीरे करके अपन हटाएंगे, पर पहले तो और ना आवे इस प्रकार का इंतजाम तो कर दूं। तो ठीक स्थान पर रखते हैं कि वह रॉ मटेरियल और अधिक इम्प्योर ना हो जाए, और फिर उस रॉ मटेरियल में से जैसे धीरे धीरे करके इम्प्योरिटीज निकालते हैं, ठीक ऐसे ही जो मलिन विकारों से युक्त आत्मा है उसमें क्रम क्रम से तपस्या के द्वारा निर्जरा करते हैं, और जब इम्प्योर मटेरियल में से सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं तब अपने हाथ में जो जैसे उद्योग करने वाला प्योर मटेरियल गेन कर लेता है, ऐसे ही आत्मा भी तपस्या करते करते समस्त कर्मों का क्षय करके अपनी विशुद्ध अवस्था का अनुभव कर लेता है। तो जैसे संसार में सात बातें जाननी प्रयोजनभूत हैं, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में इन सातों तत्वों का जानना प्रयोजनभूत है, आवश्यक है। नाम स्थापना द्रव भाव तस्तन्यासा, अपन देखें कि अपने विचारों को व्यक्त करते समय अपन भाषा का उपयोग करते हैं। सो भाषा चार प्रकार से उपयोग में आती है। लोक व्यवहार चलाने के लिए प्रमाण और नए के द्वारा जो वस्तु जानने में आई है उसे लोक व्यवहार में कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसी का नाम निक्षेप है। निक्षेप कहो या लोक व्यवहार चलाने के लिए प्रमाण नए के द्वारा जानी हुई वस्तु का कथन करना, एक ही बात है। लोक में चार ही प्रकार से अपन वचन व्यवहार करते हैं, वो कौन कौन से हैं, वही निक्षेप है। एक तो किसी व्यक्ति के जाति और गुण इत्यादि नहीं भी हो फिर भी उसका नाम रख देते हैं, वो नाम निक्षेप हो गया व्यवहार चलाने के लिए। जैसे किसी को कह देते कि भाई नाम रख दिया कि सेवक, अब वो सेवा का कार्य नहीं करता, किसी का सेवक भी नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम उसका रख दिया सेवक, तो ये हो गया नाम निक्षेप। और स्थापना निक्षेप में उसी रूप में या अन्य रूप में दोनों प्रकार से यह वही है इस प्रकार की अपन कल्पना या आरोप कर देते हैं, काष्ठ या धातु की प्रतिमा बना करके अगर करते हैं तो वो तदाकार स्थापना है। और ये शतरंज खेलते समय हाथी घोड़ा इत्यादि राजा वजीर की कल्पना अनघड़ बिना किसी आकृति के ही और अपन कर लेते हैं वो सब, अतदाकार स्थापना है। नाम स्थापना और के नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में अंतर इतना ही है कि नाम निक्षेप में पूज्यता का भाव नहीं आता, लेकिन स्थापना निक्षेप में तो पूज्यता और अपूज्यता का भाव स्पष्ट रहता है। अगर आपने अपने पूज्य व्यक्ति की किसी चीज में स्थापना करी होगी तो आपके मन में उस प्रतिमा को या उस फोटो को देख करके पूज्यता का भाव, सम्मान का भाव अवश्य आएगा। और अगर हमने किसी आपके चित्र इत्यादि में किसी को सेवक कह दिया, हो सकता है जबकि उसका उससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा भी हो सकता। द्रव्य निक्षेप भी है जिसमें हम सिर्फ वर्तमान पर्याय की तरफ देखते हैं, उस व्यक्ति की भूतकाल में और भविष्यकाल में कैसी पर्याय होगी इससे हमें मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति पहले सेवा का कार्य करता होवे और वर्तमान में अपन को मिल जाए तो अपन कहते कि भाई सेवक है, पहले करता था सेवा का कार्य, और आगे भी जिसका मन सेवा का कार्य करने का हो तो उसको भी सेवक कहते हैं। लेकिन किस अपेक्षा से? वर्तमान में उसकी पर्याय को देख करके उसे सेवक कहते हैं। इस प्रकार द्रव्य निक्षेप सिर्फ वर्तमान की पर्याय को ही देख करके कथन करता है, व्यवहार करता है। और भाव निक्षेप में तो वर्तमान की पर्याय में भी जब उस रूप पर नमन हो रहा हो तब उसे ग्रहण करता है, जैसे कोई को अपन सेवक कहें लेकिन रोटी खाते हुए सेवक नहीं कहेंगे हम, कपड़ा धोते समय आते जाते समय सेवक नहीं कहेंगे भाव निक्षेप की अपेक्षा। जब वो सेवा का कार्य कर रहा होगा तो सेवक कहेंगे, पूजा का कार्य करते हुए व्यक्ति को पुजारी कहेंगे, खाना खाते हुए आते जाते अपने अन्य काम करते हुए व्यक्ति को पुजारी नहीं माना जाएगा भाव निक्षेप की अपेक्षा से। वो तो द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से पुजारी कहो तो कह सकते। इस प्रकार से ये नाम की अपेक्षा स्थापना की कहो तो कह सकते, लेकिन भाव की अपेक्षा तो जब उस कार्य में वर्तमान पर्याय में जीव संपन्न हो तभी उसके साथ ऐसा व्यवहार अपन करते हैं। पंडित जी हैं एक इंदौर में, वो इसको समझने के लिए बड़े आसानी से कहते कि देखो, एक तो नाम मात्र की गाय है, हैं? जिसको अपन गाय कहते हैं, एक है चित्र की गाय और एक है गाय का बछड़ा जो आगे गाय बनेगा, हैं? और एक है गाय जो सचमुच अपन को दूध देती है। देखो चार ही गायें हैं कि नहीं, लेकिन अपना व्यवहार चलाने के लिए हैं। वास्तव में देखा जाए तो गाय तो वो है जो कि अपने को दूध देती हो। भाव निक्षेप की अपेक्षा से अपन अगर देखें तो उसे ही अपन गाय मानेंगे, पर लोक व्यवहार में तो इस प्रकार चारों बातें भाषा का उपयोग करके अपन सही मानेंगे। इस तरह सात तत्व और सम्यक दर्शन आदि का व्यवहार अपन करते हैं तो इन निक्षेपों की मदद से कर सकते हैं। उनका अगर ज्ञान करना हो सात तत्वों का और सम्यक दर्शन आदि का तो कहती कि प्रमाण नये अधिगमा, प्रमाण और नये के द्वारा अधिगम अर्थात ज्ञान हो सकता है। जो सकलादेशो प्रमाण और विकलादेशा नया, जो एक साथ समस्त पदार्थों को जानता है वो प्रमाण, और जो एक एक अंश को क्रमशः किसी अपेक्षा से जानता है वह नय हो गया। इस प्रकार प्रमाण और नय के द्वारा भी अपन सम्यक दर्शन और जीवादि सात तत्वों को आसानी से जान सकते हैं। और निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, यह भी उन सम्यक दर्शन और सात तत्वों को जानने का उपाय है जिसके द्वारा भी अपन जान सकते हैं। लोक व्यवहार में भी अपन इन सब की मदद लेते हैं जानने के लिए, लेकिन अपन को उनके नाम नहीं समझ में आते हैं। निर्देश का मतलब है वस्तु का स्वरूप कैसा है ये जानना। सो जिस चीज को अपन चाहते हैं उसका स्वरूप भी अपन को मालूम रहता है, रहना चाहिए, उसको कहते निर्देश। उसका स्वामी कौन है? स्वामित्व। साधन उस वस्तु की उत्पत्ति में क्या कारण है, कौन कौन से कारण हैं, ये सब जानना भी साधन कहलाता। और वस्तु कहां पर प्राप्त होगी, किसके आधार पर रहेगी, ये अधिकरण है। और वस्तु के काल की अवधि को जानना, ये हो गया स्थिति। और वस्तु के भेदों का विधान करना, ये हो गया विधान। इनको अगर अपन सम्यक दर्शन इत्यादि में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि जैसे सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, तो अपन ने पढ़ा तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व के अर्थ में जो रुचि है वही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार से निर्देश हो गया। अकेला सम्यक दर्शन जानना चाह रहे हैं अपन, उसके बारे में 6 बातें जानना जरूरी हैं, तब पूरा सम्यक दर्शन के बारे में ज्ञान होगा। उसके स्वरूप को जाने, उसका स्वामी कौन है, अजीब तो है नहीं, जीव ही उसका स्वामी है। इस प्रकार से स्वामित्व की अपेक्षा देखें तो सम्यक दर्शन का स्वामी तो जीव है। साधन क्या है? अंतरंग और बाह्य दोनों प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। सो अंतरंग में तो दर्शन मोहिनि के क्षय क्षयोपशम और उपशम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बाह्य में मनुष्य और तिर्यंच होवे तो जाति स्मरण, जिनेन्द्र भगवान के बिंब का दर्शन और धर्म का श्रवण, ये भी सम्यक दर्शन में 3 बाह्य कारण बन सकते हैं। और जो नारकी जीव हैं उनके लिए भी 3रे नरक तक धर्म श्रवण, जाति स्मरण और साथ में वेदना, अत्यंत वेदना होने पर, इन 3 कारणों के मिलने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती। लेकिन 4थे नरक से 7वें नरक तक धर्म श्रवण नाम का बाह्य साधन उपलब्ध नहीं होगा। इस अपेक्षा से 2 ही साधन वहां पर रहेंगे। देवों में अगर देखा जाए तो 16 स्वर्ग तक के देवों में देव रिद्धि के दर्शन करने से, धर्म का श्रवण करने से, जिन बिंब के दर्शन नहीं लिखा, जिन महिमा का दर्शन, क्योंकि देव लोग तो साक्षात जिनेन्द्र भगवान के समोचरण में चले जाते हैं। सो स्पष्ट लिखा है कि जैसे जिन बिंब है उसका वह जिन महिमा में गर्भित है, लेकिन जिन बिंब में तो जिन महिमा गर्भित नहीं है, लेकिन जिन महिमा में तो जिन बिंब का दर्शन गर्भित है। ऐसे कारण देवों के लिए सम्यक दर्शन में बन सकते। लेकिन उससे ऊपर के जो ग्रेवेक इत्यादि हैं, अनुत्तर और अनुदिश विमान हैं, उनमें देवों की रिद्धि देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसा बाह्य साधन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सब अहमिंद्र हैं, एक दूसरे की विशेषता देख करके वे प्रभावित नहीं होते हैं, उनमें भेद प्रभेद नहीं होने की वजह से। तो ये इस तरह से अपन बाह्य साधनों का विचार भी कर सकते हैं। अंतरंग में तो दर्शन मोहिनी का क्षय क्षयोपशम उपशम जब होगा तो सम्यक दर्शन होगा। इस तरह से साधन के को जान करके भी सम्यक दर्शन का विशेष जाना जा सकता। अधिकरण की अपेक्षा से देखा जाए तो सम्यक दर्शन का आधार क्या होगा? आधार तो आत्मा ही होगी, जीव ही होगा, निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखें तो। और अगर व्यवहार की अपेक्षा से देखें तो जिस शरीर में वह आत्मा है वह भी आधार है, और 3 लोक में जहां की तृष जीव जहां तक पाए जाते हैं, सो पूरी तृष नाली भी आधार बन जाएगी सम्यक दर्शन का। शरीर भी आधार है और तृष नाली भी सम्यक दर्शन का आधार है। व्यवहार से देखा जाए और निश्चय से देखा जाए तो हमारी आत्मा या चेतना ही सम्यक दर्शन का आधार है, उसी के आधार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। स्थिति की अपेक्षा से देखें तो उपशम सम्यक दर्शन तो होवे तो अंतर मुहूर्त तक ही टिकता है, उत्कृष्ट होवे या कि जघन रूप से भी होए तो एक अंतर मुहूर्त तक ही उपशम सम्यक दर्शन का काल है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन का जघन्य काल तो अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल 66 सागर तक होने के बाद सम्यक दर्शन रह सकता है, और क्षायक सम्यक दर्शन तो उसी भाव से तीसरे या चौथे भाव से वो मोक्ष चला जाएगा। उस अपेक्षा से अगर सादी अनंत है ऐसा कहें तो कह सकते हैं। संसारी जीव की अपेक्षा से बड़ी विशेष बात लिखी है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर लो, कैसे इतने में तो सम्यक दर्शन ही होगा, और एक भाव मनुष्य का तो लेगा ही और एक तो है ही उसके, तो 2 पूर्व कोटि आयु और अधिक 33 सागर सर्वार सिद्धि में उत्पन्न करवाया, और वहां से शायक सम्यक दृष्टि को ला करके पुनः मनुष्य 1 पूर्व कोटि के मनुष्य हुए और फिर अपने मोक्ष के लिए तपस्या करी, तो अधिकतम समय कितना बन गया शायक सम्यक दर्शन का संसारी जीव की अपेक्षा से 2 पूर्व कोटि 8 वर्ष कम और 33 सागर इस प्रकार से। और वैसे सिद्ध जीवों की अपेक्षा से देखा जाए तो एक बार प्राप्त होने के बाद अनंत काल तक सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन रहता है। और विधान की अपेक्षा से डिवीजन की अपेक्षा से देखा जाए तो सम्यक दर्शन तो एक प्रकार का है, लेकिन उत्पत्ति की अपेक्षा देखें तो निसर्गज भी है और अधिगमज भी है, और अपनी अपनी कषायों की भूमिका की अपेक्षा से देखें तो सराग सम्यक दर्शन भी है और वीतराग सम्यक दर्शन भी है, निश्चय सम्यक दर्शन भी है और व्यवहार सम्यक दर्शन भी है। 3 भेद उसके क्षय क्षय उपशम और उपशम की अपेक्षा कर्मों के देखें तो औपशमिक क्षायक और क्षय उपशमिक 3 प्रकार का सम्यक दर्शन है। जितने जीव हैं उतने भेद सम्यक दर्शन के संख्यात हो सकते हैं, होते हैं अलग अलग, ऐसा भी कह सकते। सम्यक दर्शन और 7 तत्व इत्यादि को जानने का एक उपाय और है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, वस्तु का अस्तित्व उसे कहते हैं सत, वस्तु के अस्तित्व को ही सत कहेंगे, और वस्तु के जो गिनती है उनको कहेंगे वर्तमान काल। तो कहां पर रहते हैं ये जानना चाहेंगे तो उसे कहेंगे क्षेत्र, और तीनों कालों संबंधी कहां कहां पर पाए जाएंगे ये सब कहलाता है स्पर्श, और एक निश्चित समय तक ठहरने की अपेक्षा अगर लेते हैं तो उसे कहते हैं स्थिति, और कितने समय तक वह पर्याय नहीं प्राप्त होगी और कितने समय बीच में अंतर रहेगा फिर बाद में प्राप्त होगी, तो जितना विरह काल है उसे ही अंतर कहते हैं। और औपशमिक क्षय उपशमिक और क्षायक ये जो भाव हैं इन्हें ही परिणाम या भाव कहते हैं, और कौन से सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कौन सा सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि ज्यादा और कम है इस बात का अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे ही अल्प बहुत कहते हैं, कमती वेसी जानने का नाम ही। उसके लिए लिखा आचार्य भगवंतों ने कि भैया उपशम सम्यक दृष्टि सबसे कम है, उनसे असंख्यात गुने तो संसारी क्षायक सम्यक दृष्टि जीव हैं, और उनसे भी असंख्यात गुने क्षय उपशमिक जीव हैं, और अनंत गुने तो क्षायक मुक्त जीव हैं। इस प्रकार से इनमें हम अल्प बहुत की कल्पना कर सकते हैं। अपन वैसे भी कोई सामग्री खरीदते हैं बाजार में तो 7 बात इन सब बातों का ध्यान रखते, 8 बातों का, भैया हमें आपकी दुकान से पेन खरीदना है, हैं आपके यहाँ पर पेन? हाँ अस्तित्व तो है हमारे यहाँ पर, पेन मिल जाएंगे। क्या हमें 150 लेना हो तो इतनी संख्या में मिल जाएंगे? हाँ भाई मिल जाएंगे इतनी संख्या में, अच्छी बात। तो क्या यहीं पर इस दुकान पर मिल जाएंगे? हाँ यहीं इस दुकान पर मिल जाएंगे। और अगर हम दिल्ली में खरीदना चाहें तो आपकी कोई दुकान है क्या वहां पर? आप बता दो हमें पता। हाँ भाई वहां भी हमारी ले सकते दुकान, वहां पर भी है। इस प्रकार अपन स्पर्श के बारे में भी रोजमर्रा के कार्यों में जान लेते हैं कि कहां कहां वह चीज प्राप्त होगी, इतना ही नहीं कितने समय तक वह चीज ड्यूरेबिलिटी कितनी है, गारंटी लो, साल भर टेके के दो साल टेके अच्छी से, अगर आप चलाओगे तो इतने समय तक वो ठीक ढंग से अपना काम करती रहेगी, ऐसी हम गारंटी लेते हैं। ये उसका काल हो गया। आपकी दुकान पे हम अगर 7:30 बजे सवेरे आवे और इतवार को, ए भैया 7:30 पे इतवार को नहीं यू हमारी दुकान तो बंद रहे, लियो ये हो गया दुकान नहीं खुलने, उस वस्तु के नहीं मिलने का काल, विरह काल। यही अंतर है जिसमें कि हम वस्तु लेने ना पहुंचे, उस समय वो वहां पर उपलब्ध नहीं होगी। और देखो चार प्रकार की वैरायटी पेनों की हैं, सो अलग अलग चारों वैरायटी के इतने इतने हमारे लिए बांध करके आप दे दो, कोई 25, कोई 50, कोई 100, कोई 200। ऐसा अपन सामग्री खरीदते समय उस कहते हैं। ऐसा ही तो सम्यक दर्शन और 7 तत्वों के जानने में इन 8 बातों का जानना अनिवार्य हो जाता है। उसको जानते समय मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम, चूंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है इसलिए यहां पर तो सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान है उसी का उल्लेख किया है। सम्यक दर्शन के साथ ही मति ज्ञान होगा, श्रुत ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान तो सम्यक दर्शन के होने पर ही होंगे, ऐसा आचार्य भगवंत कह रहे हैं। मति ज्ञान आगे जाकर के बताएंगे कि जो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से हो उसे मति ज्ञान कहते। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के बारे में विशेष अपन जब ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ही श्रुत ज्ञान कहते हैं, और बिना इंद्रिय और मन की सहायता के रूपी पदार्थों को जानते हैं तो उसे अवधि ज्ञान कहते हैं, और दूसरे के मन में स्थित बात को अपन जान लेते हैं उसे मनय पर्याय ज्ञान कहते हैं। और जो एक साथ संसार के चर अचर समस्त पदार्थों को उनकी समस्त पर्यायों को जानने की क्षमता वाला है वह तो केवल ज्ञान है। इस प्रकार 5 प्रकार के ज्ञान हैं। तत्प्रमाणे वास्तव में यह ज्ञान ही प्रमाण है, जो हमने आपसे कहा था कि प्रमाण नैरधिगमः, हमें ज्ञान तो प्रमाण के द्वारा होता है और नयों के द्वारा, सो प्रमाण तो ये 5 ज्ञान ही हैं, इन्हीं के द्वारा अपन को ज्ञान होता। इसमें प्रथम जो 2 हैं वो परोक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। क्यों परोक्ष है भाई? कहते इंद्री मन की सहायता से होते हैं, प्रकाश इत्यादि होने पर ही हो पाते हैं, परावलंबन की अपेक्षा से ये परोक्ष कहलाते। वैसे तो अपन देखें तो सामने दिख रहा सब चीजें तो अपन को लगेगी प्रत्यक्ष तो दिख रही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष लगती जरूर हैं, इसलिए उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है, लेकिन वास्तव में हैं तो वे परोक्ष ही। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों ही इंद्रिय और मन की सहायता से प्रकाश इत्यादि के आलंबन से होते हैं, इसलिए उनको परोक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्षम मन्यत अर्थात जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान है, जिसमें अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान तो देश प्रत्यक्ष है आंशिक रूप से, और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आता है। मति ज्ञान के ही बहुत नाम भेद नाम लिए गए हैं, एकार्थवाची मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित्य नर्थांतरम। मति ज्ञान स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये सब मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम हैं। अगर अपन देखें कि मन और इंद्रियों के वर्तमान काल में जो पदार्थों का ज्ञान हो रहा है वो सब मति ज्ञान कहलाएगा, और वर्तमान में किसी पदार्थ को देख करके अपन कहते कि भैया ये तो पहले भी देखा था ये ही है, तो यह वही है। इस प्रकार का जो अपन को ज्ञान होता है उसे ही अपन संज्ञा कह सकते हैं, और जाने हुए पदार्थ की वर्तमान में अगर स्मृति आ जावे तो उसको स्मरण कहते हैं। और जहां जहां धुआं होता है वहां वहां पर अग्नि अवश्य होती है। देखो जैसे रसोई का घर है वहां खूब धुआं निकलत रहते हैं तो वहां पर तो अग्नि रहती है। इस प्रकार से अपन व्याप्ति पूर्वक तर्क के द्वारा भी जान लेते हैं, इसे ही चिंता कहते हैं। चिंता को यहां पर चिंतन यह शब्द दिया गया। जैसे अपन किसी चीज का चिंतन करते हैं, विभिन्न प्रकार के लॉजिक दे करके, तर्क दे करके, उसी को चिंता यहां पर कहा गया है। और साध्य से साधन का ज्ञान अपन अनुमान करके करते हैं, उसे ही अभिनिबोध कह सकते हैं अपन। तो जैसे कि जहां पर ये जो पहाड़ है, इसमें अग्नि होना चाहिए भाई, धुआं बहुत दिख रहा, ऐसा अपन अनुमान लगा लेते हैं। ये सब मति ज्ञान के ही प्रकार हैं। सो मति कहो, स्मृति कहो, संज्ञा कहो, चिंता कहो, अभिनिबोध कहो, सब मति ज्ञान के क्षयोपशम से ही होते हैं। इसलिए सब एकार्थवाची शब्द हैं, अलग अलग नहीं है। तदिंद्रिया अनिंद्रिय निमित्तम, जो मति ज्ञान है वो तो पांच इंद्री और मन के निमित्त से होता है, उसमें इनका आलंबन आवश्यक है। और वह मति ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अवग्रहे हावाय धारणा, मति ज्ञान के चार वेद हैं, अपन को पता नहीं लगता है। और ज्ञान प्राप्ति में ये चारों स्टेप अपन प्राप्त कर लेते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। सबसे पहले होता है इंद्रियों के और मन के माध्यम से दर्शन, और विषय विषयी सन्निपात अनंतरम यद प्रथमम ज्ञानम सा अवग्रह। विषय और विषयी के प्रथम दर्शन होने के बाद, सामान्य अवलोकन होने के बाद जो ज्ञान होता है वह अवग्रह कहलाता है। जैसे कि अपन ने कोई चीज देखी, सो सामान्य अवलोकन हुआ, लेकिन उसमें से यह सफेद है, यह काली है, इस प्रकार का जो ज्ञान हुआ वो हुआ अवग्रह। अब जी सफेद तो है लेकिन का भाव चाहिए, ऐसा अपने मन में जो जिज्ञासा जागृत हुई उसी का नाम तो ईहा है। कंफ्यूजन नहीं है, संशय नहीं है, लेकिन हम जिज्ञासा, जैसे अपन रोज अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करते हैं, हमें अश्रद्धा नहीं है, संशय नहीं है मोक्ष मार्ग में, लेकिन हमें ज्ञान कमती होने से विभिन्न प्रकार की चीजें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए हम जिज्ञासा करते हैं। ऐसी ही जिज्ञासा मति ज्ञान में भी जो ईहा भेद है उसमें होती है। और जब जिज्ञासा हुई तो अपन ने खोजबीन करी, सफेद चीज तो बगला भी हो सकती है, पताका भी हो सकती, और भी बहुत चीजें हो सकती, दीवाल भी हो सकती। दीवाल तो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें तो हवा चलने से कुछ उड़ता हुआ महसूस। अच्छा, और उड़ करके बहुत दूर जा ही पड़ रहा है, सो झंडा भी नहीं हो सकता। तो बगलों की पंक्ति ही है उतनी, सफेद चीज ये कंफर्म हो गया। हमने जो जिज्ञासा की थी उसका विभिन्न पहलुओं से विचार करके जो निर्णय, उसका नाम है। और काल इसका विस्मरण को, ये चारों चीजें अपन को ये रोज रोज अपन जान चीजों को उसमें ये हो वग्रह भी हुआ। वग्रह से पहले सामान्य रूप इसको देखा देख अपन ने क्योंकि पहले ने ये हो